दिन भर सोमवार 7 दिसंबर मैं हूं निखिल रंजन। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल को अदालत में पेशी से नहीं मिलेगी छूट।
अब इनका रास्ता एक ही है कि पटियाला हाउस में कल हाजिर हो और बेल लेकर फिर उसके बाद ट्रायल शुरू हो।
चेन्नई में आज नहीं हुई बारिश, राहत के कामों का श्रेय लेने की मची होड़। अखलाक अहमद के बेटे ने कहा, इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाएंगे। वेनेजुएला में 2 दशकों बाद दक्षिण पंथियों को मिली बड़ी जीत।
The thing is, it goes beyond the number of seats that we're going to have in the parliament. The problem that we have to face is how to solve the huge crisis that we have in Venezuela.
आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पेशी में छूट देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी से छूट देने संबंधी याचिका में कोई दम नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने निचली अदालत के पेश होने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। फ्रांस में दक्षिण पंथी पार्टी नेशनल फ्रंट रविवार को हुए स्थानीय चुनाव के पहले दौर में 13 में से 6 क्षेत्रों में आगे चल रही है। नेशनल फ्रंट की नेता मैरिन ली पेन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी पार्टी पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांस में हाल ही में हुए हमलों के बाद चुनाव के ये नतीजे चौंकाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, फ्रांस में हाल में हुए हमलों की वजह से स्थानीय चुनावों में नेशनल फ्रंट को मिली ऐतिहासिक जीत को समझा जा सकता है। सच ये है कि फ्रांस के लोग नेशनल फ्रंट पर अब ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। ये थे मैरिन ली पेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यमन की सरकार और शिया हूथी विद्रोही इस महीने में होने वाली शांति वार्ता के लिए राजी हो गए हैं। यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इस्माइल ओल्ड चेख अहमद ने कहा कि शांति वार्ता स्विट्जरलैंड में 15 दिसंबर से शुरू होगी। यमन के राष्ट्रपति अब्द रबू मंसूर हादी ने कहा कि सरकार बातचीत के दौरान अंतरिम युद्ध विराम के लिए सहमत हो गई है। चीन की राजधानी बीजिंग में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने से सरकार को पहली बार रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। चेतावनी जारी रहने तक बीजिंग में स्कूल बंद रहेंगे और निर्माण कार्य रुके रहेंगे। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक रेड अलर्ट शीर्ष स्तर की चेतावनी है और इससे पहले कभी जारी नहीं की गई थी। प्रशासन को आशंका है कि 3 दिन तक धुंध बहुत ज्यादा रहेगी, इसलिए राजधानी बीजिंग में सम और विषम नंबर की गाड़ियां 1 दिन छोड़कर बंद रहेंगी। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमरीकी भूगर्भ सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.2 थी और इसका केंद्र तजाकिस्तान के मुर्गाब के पास जमीन के करीब 28 किलोमीटर अंदर था। भूकंप के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। कई शहरों में लोग घरों और दफ्तरों से बाहर आ गए। समाचार एजेंसी AFP ने तजाकिस्तान की सरकार के हवाले से कहा है कि भूकंप के बाद किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। सीरियाई सरकार ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हमलों में उसके 3 सैनिकों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ थोड़ी देर में आपको बताएंगे चेन्नई की बारिश का ताजा हाल, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेशी में छूट देने से इनकार कर दिया है। सोनिया और राहुल ने निचली अदालत के पेश होने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति में हेरफेर की गई है और ये सुनवाई इसी सिलसिले में हो रही है। पूरा ब्यौरा सुनिए अमल चौधरी से।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी से छूट देने संबंधी याचिका में कोई दम नहीं है। अब इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी, जहां दोनों नेताओं को पेश होना होगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। भाजपा के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि भारत में कानून सबके लिए एक तरह से काम करता है
और इस पर भी उनको जवाब देना होगा, क्योंकि भारत का कानून भारत की आम जनता के लिए और सोनिया जी और राहुल जी के लिए बराबर ही है। संविधान ने उनको बराबर का अधिकार दिया है, तो भारत के अंदर कानून से लुका छुपी ज्यादा देर चलती नहीं है। कानून को फेस करना पड़ता है और उनको फेस करना पड़ेगा।
कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस के नेताओं ने आश्चर्य जताया है और कहा है कि वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,
मैं आपको कानूनी तकनीक पर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन एक और आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के हजारों लाखों लोगों में से किसी ने आज तक नहीं कहा कि हम चीट हुए। किसी और ने नहीं कहा कि हम चीट हुए। इस प्रकार से हुए, कब हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, एक भी ऐसा आरोप भी नहीं है कंप्लेंट में, लेकिन चीटिंग का ऑफेंस दोष फिर भी बन जाता है कानून में 420 का। ये हम समझते हैं कि विशेष रूप से कानून की जो निर्णय है वो कानूनी आधार पे इसलिए बहुत कमजोर है और हम इसलिए इसको चुनौती देने के लिए कटिबद्ध है।
नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी दी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की स्थापना 1938 में हुई थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया ये अखबार 2008 में बंद हो गया था। नवगठित कंपनी यंग इंडिया ने 2010 में इसका अधिग्रहण कर लिया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि एसोसिएटेड जनरल की संपत्ति लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए बतौर ऋण दिए थे, जो गैर कानूनी है। उनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के बंद होने के बाद कंपनी की संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया और यंग इंडिया नाम की एक नई कंपनी बनाई गई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा,
हाईकोर्ट ने भी 15 महीने की सुनवाई की और आखिर में आज उन्होंने फैसला दिया कि इनकी बातों पर कोई दम नहीं है और कोई वजन नहीं है और इसीलिए इसको डिसमिस कर रहे हैं और अब इनका रास्ता एक ही है कि पटियाला हाउस में कल हाजिर हो और बेल लेकर फिर उसके बाद ट्रायल शुरू हो।
इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा और सुमन दुबे सहित 6 लोगों को उन्होंने अपनी याचिका में अभियुक्त बनाया है।
रिपोर्ट सुना रहे थे अमल चौधरी। अब रुख करते हैं चेन्नई का। चेन्नई में आज दिन साफ था और पूरे दिन बारिश नहीं हुई, हालांकि कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और परेशान लोग मदद की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। राहत एजेंसियां मुस्तैदी दिखा रही हैं, लेकिन लोगों की शिकायत बनी हुई है। रेल और विमान सेवाओं ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव चेन्नई में हैं और कल से ही वहां का हाल बता रहे हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं ताज़ा हाल के बारे में जानने के लिए। नितिन, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बताइए कि इस वक्त आप कहाँ हैं और अब तक आपने आज का कैसा रहा है वहाँ का दिन?
निखिल, इस वक्त हम एक तेलमपेट करके इलाका है चेन्नई के बीचों बीच, वहाँ पर मौजूद हैं और आज चेन्नई में जो चीज पहली बार दिखी है सबसे ज्यादा वो दिखी है ट्रैफिक, और जिसको काफी सामान्य होने वाले हालात बताए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर ट्रैफिक की समस्या बहुत विकराल है और जब से बारिश हो रही है पिछले 6 दिनों से तो सड़कें एकदम सुनसान थी, हर जगह पानी भरा था। लेकिन श्रोताओं को ये बताना बहुत जरूरी है कि अभी भी कम से कम 20% ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 1 से 1.5 फीट पानी से आपकी गाड़ी होकर निकलती है और दुकानें, घर, वहां पर जाने के लिए लोगों को पानी से होकर जाना पड़ता है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आज एक घोषणा की है, ऐसा तमाम रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि जिन लोगों के घर में बाढ़ आई थी, जो उससे आहत हुए हैं, उनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे, 10 किलो चावल दिया जाएगा, साड़ी धोती दी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो दाग है इस बाढ़ के और जो दर्द है इस बाढ़ का, जिस तरह से लोगों को नुकसान पहुंचा है और जिस तरह से उनको सदमा पहुंचा है, उसको जाने में निकल अभी बहुत समय लगेगा। स्कूल कॉलेजों की बात करें तो ये फैसला किया गया है कि मंगलवार और बुधवार भी सभी स्कूल कॉलेज जो है वो चेन्नई और आसपास में बंद रहेंगे, लेकिन भले ही ट्रेन सेवाएं, हवाई सेवाएं थोड़ी बहुत बहाल हो गई हैं, लेकिन जो हालात है रेलवे स्टेशनों पर, जैसे आज मैं रेलवे स्टेशन पर गया था निखिल, और वहां पर मैंने करोड़ों रुपए का सामान पहली बार ऐसा देखा जो पार्सल्स में पैक्ड था, करीब 3-4-5 दिनों से रखा था और बारिश में पूरी तरह से सड़ चुका है, तो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तमिलनाडु को इस पूरी आपदा से बाहर आने में बहुत लंबा वक्त लगेगा।
नितिन, एक ये भी मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जो राहत की बात कही जा रही है, जिन लोगों के घरों में पानी घुसा था वहाँ क्या स्थिति है, और दूसरा ये कि मौसम के बारे में क्या कहना है आगे के लिए मौसम विभाग का?
मौसम के बारे में जो अनुमान है निखिल, वो बहुत बेहतरीन नहीं है। वो तमिलनाडु के लिहाज से और तमिलनाडु के लोगों के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जो अंदेशा है वो ये है कि बुधवार, गुरुवार और फ्राइडे यानी शुक्रवार को भी बारिश होगी और भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है इस पूरे इलाके में। और जैसा आपने कहा कि जिन लोगों के घर में बारिश का पानी पहुंचा था, वो सभी लोग, लगभग सभी लोग अपने घरों से बाहर हैं। बहुत कम है, 20-30% है जो वापस लौट सके हैं, क्योंकि जिन घरों में पानी आ भी गया था और पानी निकल भी गया है, वहाँ जबरदस्त सीलन है, वहां पर महामारी का खतरा है, क्योंकि बाथरूमों में पानी फैला हुआ है, सीवर लीक कर रहे हैं, मैनहोल लीक कर रहे हैं। इसलिए अभी जो समस्या है वो और ज्यादा विकराल हो सकती है। अगर जैसा अनुमान बताया जा रहा है मौसम विभाग का कि 2-3 दिन में बारिश होगी, तब स्थिति थोड़ी और गंभीर हो जाएगी, और सरकार को मुझे लगता है कि उससे निपटने के लिए कमर कस लेनी बहुत जरूरी है इस बार।
चेन्नई से नितिन श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चेन्नई में बारिश और बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद को कई लोग और संगठन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के किए कामों का श्रेय लेने में जुट गए हैं। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी AIDMK ने ऐसे लोगों की शिकायत करने वालों से सबूत मुहैया कराने को कहा है, जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। चेन्नई से एक रिपोर्ट के साथ इमरान कुरैशी।
चेन्नई में खासकर बहुत सारा राहत का सामान आ रहा है। संस्थाओं के अलावा छोटे मोटे समूह भी राहत के काम में जुटे हैं। पिछले 2-3 दिनों से यह इल्जाम आने लगा है कि थोड़े लोग राहत के काम में रुकावट लाने की कोशिश कर रहे हैं।
वैसे एक्सपेक्टेशन तो सबको गवर्नमेंट से बहुत था, लेकिन गवर्नमेंट के कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिए और कोई टाइप का सपोर्ट दिखाई नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग जैसे राजस्थान के संघ है वगैरह, मतलब बहुत से संघ है, कुछ अग्रवाल फैमिलीज है, तो सब लोग ये खाना फ्लड रिलीफ के लिए खाना बनवा करके अपनी अपनी जगहों पर बनवा करके डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं हर एरिया में, अलग अलग एरिया में, मतलब गाड़ियाँ भर भर के जा रही है। लेकिन कल इंसिडेंट ऐसा हुआ हमारे साथ कि हम जब वडपल्ली गए तो जैसे 5 बजे थे शाम के, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे, उधर का लोकल कोई पॉलिटिशियन था, तो वो लोग बीच में और बोले कि आप खाना ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपका यहाँ का लोकल चीफ मिनिस्टर का फोटो लगा के फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जैसे हमने बोला सर ये तो हमसे होगा नहीं, तो हम गाड़ियाँ रिटर्न लेके जा रहे हैं, हम कहीं दूसरे एरिया में जाके देंगे, तो उन्होंने बोल दिया ठीक है आप गाड़ियाँ रिटर्न लेके जाओ। तो वहाँ की जो लोकल पब्लिक खड़ी थी, उन्होंने उस नेता था उसको समझाया कि तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो और जो करने आ रहे हैं उनको भी तुम रिटर्न भेज रहे हो। तो पब्लिक ने उनको समझा बुझा करके फिर उधर से रवाना किया कि हमको तुम्हारा हेल्प चाहिए ही नहीं, मतलब बात हाथापाई तक आ गई थी। तो उस काउंसलर को वहाँ से भागना पड़ा, फिर हमने वो बोट में पूरा सामान चढ़ा करके हर गली गली में अंदर जाके देखे आए। यहाँ पर पब्लिक जो है पब्लिक ही पब्लिक का सपोर्ट कर रहा है, यहाँ गवर्नमेंट से किसी को एक्सपेक्टेशन है भी नहीं और गवर्नमेंट कुछ करना भी नहीं चाह रही है।
ये एक अलग सा इल्जाम नहीं है। लोकसत्ता पार्टी के प्रवक्ता मगेश कुमार कहते हैं,
Yesterday we 6-7 volunteers took some of the relief materials like bed sheet and went to the Padi Kuppam Middle
School. कल हमारे साथी राहत का सामान लेकर पड़ी कुप्पम मिडिल स्कूल में राहत सेंटर पर गए थे। वहां हमारे लोगों को बोला गया था कि राहत का सामान नहीं वितरित करना चाहिए जब तक राज्य के मंत्री वहां नहीं पहुंचते। हमने 3-4 घंटों तक वहां इंतजार करना पड़ा। इस तरह के बहुत सारे वाक्या हैं। ये थे मगेश कुमार के शब्द। दूसरी तरफ चेन्नई में इस तरह के वाक्या भी सुनने को आते हैं, जहां लोग वहां के काउंसलर की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए मोहम्मद जान के शब्द।
पानी तीन बार आ गया इधर, इधर आके बहुत नुकसान हो गया, बिल्डिंग गिर जाएगा, उनको पब्लिक से भी भाग करके आगे पीछे क्या करना, बच्चे सब लोग है, पूरा गाड़ी पूरा नुकसान हो गया, नुकसान होकर ऑटो गाड़ी कार पूरा नुकसान हो गया। हमारा काउंसलर जी कंदन वो आको देखो पूरा इंतजाम कर दिया, कर को कौन कौन जाना कि उसको लेकर जाको गांधी मंडपम स्कूल पूरा का काम काम भरना के।
लेकिन AIDMK ने इन इल्जामों को खारिज कर दिया है। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि किसी कार्यकर्ता को यह नहीं निर्देश दिया गया है कि राहत के सामान पर जयललिता का पोस्टर लगाएं। पार्टी का बयान ये भी कहता है कि अगर कोई इस तरह के हरकतों का वीडियो भेजे तो उन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई ली जाएगी। चेन्नई से इमरान कुरैशी।
इधर दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में गौमांस खाने की अफवाह के बाद हुए हमले में मारे गए मोहम्मद अखलाक के परिजनों का कहना है कि वो इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाएंगे। बीबीसी से बात करते हुए अखलाक के सबसे बड़े पुत्र सरताज ने कहा कि उनके परिवार ने कभी भी ये नहीं कहा कि मामले की जाँच CBI से नहीं करवानी चाहिए। एक रिपोर्ट के साथ दिल्ली से सलमान रावी।
घटना में मारे गए मोहम्मद अखलाक के सबसे बड़े बेटे सरताज का कहना है कि उनका परिवार उत्तर प्रदेश पुलिस के आरोप पत्र का इंतजार कर रहा है। वो कहते हैं कि पुलिस ने उनके परिवार वालों के बयान दर्ज कर लिए हैं और घटना के गवाहों के भी। सरताज कहते हैं कि उन्होंने अभी तक कानून के तहत मौजूदा प्रावधानों को कैंसिल नहीं किया है।
सरकार अपना काम जो यूपी गवर्नमेंट है वो किस तरीके से कर रही है, ये तो वक्त ही जानता है। आगे क्या होगा तो हमने ऑप्शन को कैंसिल नहीं किया है और ऑप्शन का यूज भी नहीं किया है।
सरताज के छोटे भाई दानिश इस मामले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे और 2 महीनों तक चले इलाज के बाद अब वो पुलिस को बयान देने की स्थिति में आ गए हैं। चूंकि वो घटना के चश्मदीद हैं इसलिए उनके बयान पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि पुलिस ने उनका बयान दर्ज तो किया है मगर अभी वो पूरा नहीं हो पाया है।
बात ये है अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट दाखिल होना बाकी है। कोर्ट में केस आएगा, कोर्ट मुकदमा सुनाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, ट्रायल होगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ पुलिस गड़बड़ी कर रही है और केस में इसने प्रॉपर जांच नहीं की है और ये कमियां छोड़ दी है। तो आगे मुझे लगेगा कि ये पॉइंट नहीं ले पा रही है, मुलजिमों को बचाने का प्रयास कर रही है, तब मुझे लगेगा, तब मैं आगे डिमांड करूंगा।
भारतीय वायुसेना में कार्यरत सरताज का परिवार अब दादरी में नहीं रहता क्योंकि वायुसेना प्रमुख की पहल के बाद उन्हें एयरफोर्स स्टेशन में सरकारी आवास आवंटित हो गया है। मगर दादरी में जो कुछ हुआ वो उनके दिल और दिमाग से उतनी आसानी से नहीं मिट सकता, इसलिए वो घटना के दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर दरवाजे पर जाना चाहते हैं।
अब ये है जो उन्होंने जैसा उचित समझा वैसा उन्होंने किया, ना ही मेरी कोई जोर जबरदस्ती है ना ही मेरी कोई डिमांड है। जैसा उनको महसूस हुआ कि ऐसा कर देना ठीक लगेगा उन्होंने किया, ना मैंने उनसे कोई फर्दर डिमांड रखी कि हमें ये किया जाए, ना ही मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप ये ना करो। उनको 100% सजा होगी और मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार, अगर मुझे कहीं तक भी जाना पड़े चाहे इसके लिए राष्ट्रपति तक गुहार लगानी पड़े तो मैं जाऊँगा।
रविवार को मोहम्मद अखलाक के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की। इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने दादरी में निषेध आज्ञा लागू करने का फैसला किया है क्योंकि कुछ संगठन इस इलाके का शुद्धिकरण करने की घोषणा कर चुके हैं। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
BBC रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ और अब रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। वेनेजुएला में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने सोमवार को घोषित चुनाव नतीजों के मुताबिक नेशनल असेंबली में बहुमत पा लिया है। दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी पार्टियों के गठबंधन वाले विपक्ष ने इन चुनावों में 16 सालों से सत्ता पर काबिज और नेशनल असेंबली में हमेशा बहुमत बनाए रखने वाली वामपंथी पार्टी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला को केवल 46 सीटों पर ला समेटा है। BBC संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
वेनेजुएला की राजधानी काराकास में विपक्षी गठबंधन की जीत की इस घोषणा के बाद उन इलाकों से आतिशबाजी की आवाजें सुनाई देने लगी जहां इन पार्टियों का जनाधार मजबूत है। इन चुनाव परिणामों ने वेनेजुएला में सत्तारूढ़ वामपंथी पार्टी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला को भारी झटका दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रीय चुनाव परिषद के अध्यक्ष टीबीसे लुसेना ने चुनाव खत्म होने के 5 घंटों बाद चुनाव परिणामों की घोषणा करते हुए बताया कि विपक्षी गठबंधन ने 167 में से कम 99 सीटें जीत ली हैं। इन चुनाव परिणामों के अनुसार सत्तारूढ़ वामपंथी पार्टी की सीटें बेहद सिमट कर केवल 46 रह गई हैं, हालांकि 22 सीटों के परिणाम आने अभी बाकी हैं। उधर सरकारी टेलीविजन पर बोलते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मेडुरो ने अपनी हार स्वीकारी है।
Nosotros viendo estos resultados hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética.
नतीजों को देखते हुए हम अपने उसूलों और नैतिक मानकों को ध्यान में रखते हुए इन विपरीत परिणामों को स्वीकार करते हैं और साथ ही वेनेजुएला की जनता से कहना चाहते हैं कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की जीत हुई है, हम इसे स्वीकारते हैं। मतदाताओं ने अपना जो फैसला सुनाया है हम उसे पूरी तरह स्वीकारते हैं। ये थे राष्ट्रपति निकोलस मेडुरो के शब्द। वेनेजुएला में पूर्व राष्ट्रपति हुगो चावेज के नेतृत्व में चले वामपंथी आंदोलन के बाद से ये पहला मौका है जब दक्षिणपंथी और मध्यमार्गी पार्टियों के गठबंधन की ओर से वामपंथियों को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद विपक्षी गठबंधन के एक नेता जूलियो बोर्गेस ने बीबीसी से बात की। उनका कहना था कि वेनेजुएला एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है।
The thing is, it goes beyond the number of seats that we're going to have in the parliament.
दरअसल मामला सिर्फ ये नहीं है कि संसद में हमें कितनी सीटें मिलने वाली हैं। मामला असल में इससे बहुत आगे बढ़ चुका है। समस्या ये है कि हम वेनेजुएला में चल रहे भारी संकट से कैसे निपटेंगे। और मेरे लिए आज की इस जीत का मतलब ये है कि वेनेजुएला के लोगों ने तानाशाही से निजात पाने के लिए वोट दिया है, इसलिए आज की ये घटना इतिहास में दर्ज होने वाली एक अहम घटना है। ये थे वेनेजुएला के विपक्षी गठबंधन के नेता जूलियो बोर्गेस के शब्द। विपक्षी गठबंधन इस बात का दावा जता रहा है कि उसे कम से कम 112 सीटें मिल जाएंगी और उसके बाद वे ऐसे कानून पास करने में सफल हो पाएगा जिससे राजनीतिक बंदियों की रिहाई संभव हो सकेगी। साथ ही केंद्र की ओर से वरिष्ठ न्यायिक पदों पर नियुक्तियां भी हो सकेंगी। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि विपक्ष राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो के भविष्य का फैसला लेने के लिए जनमत संग्रह भी करवा सकता है। राष्ट्रपति मैडुरो का कार्यकाल अगले साल अप्रैल में आधा हो पाएगा। वेनेजुएला में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है जिसके चलते अब भी यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला यानी PSUV सत्ता में बनी रहेगी और वेनेजुएला की राजनीति में एक मजबूत ताकत के बतौर रहेगी। PSUV का अब भी वेनेजुएला में निकाय स्तर पर व्यापक दखल है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद के चुनाव 2019 में होने हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी और अब आपकी चिट्ठियों के साथ राजेश जोशी और स्वाति बख्शी।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का
और मैं हूँ स्वाति बख्शी।
जी स्वाति जी, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चिट्ठियाँ आपके पास हैं, बहुत सारे ईमेल्स हैं और पोस्टकार्ड्स भी हैं, लिफाफे भी हैं।
जी, और इनमें से ज्यादातर में आज जो चर्चा है वो अक्षांश गुप्ता का जो इंटरव्यू आपने किया था इंटरनेशनल डिसेबल्ड डे यानी 3 दिसंबर
विकलांगता दिवस पर। जी हाँ,
तो इस पर जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी जमशेदपुर से कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई भी इंटरव्यू आज तक नहीं सुना है, हालांकि उन्हें समझने में शायद कुछ शब्द दिक्कत हुई लेकिन कहते हैं कि भावना समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। रफीक इब्राहिम पारकर रत्नागिरी महाराष्ट्र से उन्होंने तारीफ की है इंटरव्यू की और एक शेर लिखकर भेजा है अक्षांश गुप्ता के लिए।
क्या बात है?
कहते हैं कि न थक कर बैठ कि तेरी उड़ान बाकी है, जमी खत्म हुई तो क्या आसमान बाकी है।
बहुत खूब, बहुत सुंदर।
और इसी पर डॉक्टर सत्य कमलाकर का ईमेल है श्री काकुलम से और ये कहते हैं कि आपने जिस प्रेम से अक्षांश से बातें की वो शैली बहुत ही अनोखी है आपकी। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अक्षांश की कोटि में आता हूँ क्योंकि मैं दृष्टिहीन हूँ। मैंने भी हिंदी में PhD की है लेकिन ब्रेल लिपि सीखने का अवसर नहीं मिला। मुझे सब कुछ याद करके रखने के माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ी। फिलहाल मैं एक अध्यापक हूँ।
ये श्री काकुलम आंध्र प्रदेश से ये चिट्ठी आई। जी, और कोई चिट्ठियाँ हैं?
जी, सुनील शर्मा की भी चिट्ठी है, उन्होंने भी तारीफ की है
आप... लेकिन मैं देख रहा हूँ सुनील शर्मा साहब ने अपना पता नहीं लिखा।
नहीं, पता नहीं लिखा और वो कट गया है, उन्होंने शायद कुछ फोटोज ऐड किया लिखने के बाद। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनकी सुपौत्री से जो बातचीत थी वो इन्हें काफी अच्छी लगी है। और अक्षांश के ही इंटरव्यू पर एक और चिट्ठी, नई दिल्ली से ये ईमेल है। अनुराधा लिखती है कि हर किसी को अपना दुख बड़ा लगता है मगर डॉक्टर अक्षांश ने ये सिद्ध कर दिया कि चुनौतियां चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप उसे पार करके सफलता हासिल कर सकते हैं।
हमारे जितने भी श्रोताओं ने अक्षांश गुप्ता से जो हमने बातचीत की थी उस पर चिट्ठियां भेजी हैं, प्रतिक्रिया जाहिर की है, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी और चिट्ठियां भी आई हैं लेकिन सबका नाम यहां पर लेना भी संभव नहीं है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसने इंटरव्यू किया और कितना अच्छा था, कितना बेहतर सुनाई पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अक्षांश गुप्ता जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD कर चुके हैं, उन्होंने अपनी चुनौतियों से कैसे पार पाया, उस एवरेस्ट के ऊपर वो कैसे पहुंचे और कैसे वहां उन्होंने अपना झंडा गाड़ा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने उनसे सीखी कि कितनी अपनी मुश्किलों को आप आसान बना सकते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था।
बिल्कुल, और सभी सुनने वालों
सभी सुनने वालों के लिए भी प्रेरणादायक उनकी बात रही हो
जी। और कुछ चिट्ठियां आई हैं, उनमें पोस्टकार्ड एक आठवीं क्लास की छात्रा का, राजेश जी मैं ये उठाऊंगी, सारा फातिमा इनका नाम है और इन्होंने बिहार से चिट्ठी लिखी।
बिहार में किस जगह से, पूरा पता पढ़िए भाई, सारा फातिमा कहाँ है वो सुनना चाहते हैं।
शिवहर से इन्होंने चिट्ठी लिखी,
शिवहर बिहार से सारा फातिमा, और आठवीं कक्षा की छात्रा हैं। बहुत सारी लड़कियां हमें चिट्ठियां नहीं लिखती हैं और महिलाएं हमें चिट्ठियां नहीं लिखती हैं। मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि कहा जाए, सारा ने लगता है हमारी बात को ध्यान दिया। क्या लिखती हैं?
कहती हैं कि विनीत खरे की आवाज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बृजेश उपाध्याय की रिपोर्ट्स का शिद्दत से पहले इंतजार था, अब उनकी रिपोर्ट्स की कोई परवाह नहीं है क्योंकि अब वे जुमला बाबू के फैन हो गए।
जुमला बाबू के फैन हो गए भाई बृजेश उपाध्याय, आप ये अगर सारा फातिमा की चिट्ठी आप सुन रहे हैं तो आपको तो इसका जवाब देना पड़ेगा, कौन जुमला बाबू हैं, क्या उनके फैन हो गए हैं, ये सारा जानती हैं या फिर आप।
फारूक अब्दुल्ला फिजा लक्ष्मीपुर रक्सौल से इन्होंने चिट्ठियां भेजी हैं, इनकी दो चिट्ठियां हमारे पास पहुंची हैं। एक में इन्होंने श्वेता सिंह की पुष्कर मेले पर प्रसारित रिपोर्ट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दिन भर की पूरी थकावट उसे एक रिपोर्ट से उतर गई और उन्हें लगा कि ये खुद पुष्कर मेले में घूम रहे हैं।
बहुत सुंदर। और
इसके अलावा इनका कहना है कि जो पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पत्नी रेहम खान से
पाकिस्तान
था,
के
वो इन्हें काफी पसंद आया। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका फारूक साहब, जो हमारी उर्दू सर्विस की संवाददाता ने ये इंटरव्यू किया था उन तक आपकी बात पहुंचा दी जाएगी, धन्यवाद।
और अंत में राजेश जी, जेठाराम पवार का पत्र मैं ले रही हूँ, ये सारे रजिस्टर के
जेठाराम पवार हमारे पुराने श्रोता हैं, बारहवीं में पढ़ते हैं और बाड़मेर राजस्थान से लिखी होगी इन्होंने चिट्ठी, में गलत हूं?
नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। और उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि इनका पत्र पूरा पढ़ा जाए, जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। हालांकि इन्होंने एक बात लिखी है कि हमने महिलाओं के लिए जो विशेष सीरीज चलाई उससे संबंधित एक ये हमें लिखकर भेज रहे हैं कि हमारे गाँव की महिलाओं को अपने ही घरों में डांटा जाता है और उसको उन्हें पूरी तरह से आजादी नहीं मिलती, इसलिए परेशान होकर ये महिलाएं टंकी में कूद कर आत्महत्या कर लेती हैं। आप अगर इस विषय पर कुछ करें।
बड़ा गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं, हालांकि बारहवीं में पढ़ते हैं और इन्होंने आगे मैं देख रहा हूँ चिट्ठी में लिखा भी है कि मैं बहुत सारी चीजें नहीं समझता हूँ, बच्चा ही हूँ, लेकिन एक बच्चा सजग है, बारहवीं में पढ़ने वाला एक किशोर सजग है अपने आसपास और संवेदनशील है। तो जेठाराम पवार जी, आपने जो चिट्ठी हमें लिखी है हम उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, अगर कभी भविष्य में ऐसा संभव हुआ तो इस विषय पर हम जरूर कार्यक्रम करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आप श्रोताओं से इजाजत ली जाए, तो चलते चलते पता बता देते हैं। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और इसी के साथ हम दोनों का नमस्कार।
और अब खेल समाचार सुन लेते हैं। भारत ने आज दक्षिण अफ्रीका को चौथे टेस्ट में 337 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। भारत की जीत का पूरा ब्यौरा सुनिए आदेश कुमार गुप्त से।
ऊंट चला डेढ़ दिन लेकिन फिर भी ढाई कोस, ये कहावत पूरी तरह साबित हुई दक्षिण अफ्रीकी टीम पर, जिसके सामने भारत ने जीत के लिए 481 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन वो आज चायकाल के बाद 143 रन पर सिमट गई और भारत ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेले गए चौथे और आखिरी टेस्ट मैच को 337 रन से अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका ने 143 रन बनाने के लिए 143.1 ओवर बल्लेबाजी की। वैसे जब चायकाल के समय दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट खोकर 136 रन बनाए थे तब ऐसा लगा कि शायद मैच ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन चायकाल के बाद उसके बाकी बचे 5 विकेट केवल 5.1 ओवर में ही गिर गए। पहले विकेट कीपर डी विलास उमेश यादव की गेंद पर बोल्ड हुए, उन्होंने 57 गेंदों पर 13 रन बनाए। उसके बाद जमा खूंटा उखड़ा, ये खूंटा थे एबी डी विलियर्स जिन्होंने 297 गेंदों का सामना कर 43 रन बनाए और वो आर अश्विन की गेंद पर जडेजा के हाथों कैच हुए और ये वही विकेट था जिसकी भारत को कल से तलाश थी। डी विलियर्स के बाद एबट, पीट और मोरकल तो बस आया राम गया राम साबित हुए। वैसे आज भारत ने तब राहत की सांस ली जब कल के नाबाद बल्लेबाज हाशिम आमला रविंद्र जडेजा की गेंद पर बोल्ड हुए।
जस्ट अ फ्रैक्शन एंड इट्स हिट द टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप, दिस इज द टॉप डिलीवरी एंड इट्स डिसमिस्ड द साउथ अफ्रीकन स्किपर।
हाशिम आमला ने 244 गेंदों का सामना कर 25 रन बनाए। भारत की ओर से उमेश यादव ने 9 रन देकर 3 और रविंद्र जडेजा ने 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि आर अश्विन ने 61 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए। इसके साथ ही भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। दोनों पारियों में शतक जमाने वाले भारत के अजिंक्य रहाणे को मैन ऑफ द मैच और आर अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।
भारत को मिली जीत, रिपोर्ट सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पेशी में छूट देने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी। फ्रांस में दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट रविवार को हुए स्थानीय चुनाव के पहले दौर में 13 में से 6 क्षेत्रों में आगे चल रही है। नेशनल फ्रंट पार्टी की नेता मैरिन ली पेन ने कहा कि फ्रांस में हाल में हुए हमलों के बाद ये नतीजे चौंकाने वाले नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यमन की सरकार और शिया हुती विद्रोही इस महीने होने वाली शांति वार्ता के लिए राजी हो गए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने से सरकार को पहली बार रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। चेतावनी जारी रहने तक बीजिंग में स्कूल बंद रहेंगे और निर्माण कार्य रुके रहेंगे। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिनभर में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी ठीक डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र में। आज स्टूडियो संभाल रहे हैं अजीत सारथी। सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति और देखते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।